प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 24 जनवरी 2017 है और आज के इस afias.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के लाइफ मैनेजमेंट के लिए जो मैंने विषय चुना है ये सच पूछे तो पहले ही कुछ दिनों पहले जो हम लोगों ने तोता की घटना को लेकर बात की थी उसी से ही रिलेटेड है। आप लोगों का ध्यान होगा कि एक मेरे प्रिय श्रोता का मेल आया था कि कैसे उनका जो छोटा भाई है वो तोता लेकर के आ गया है, जिसको ये पसंद नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसकी फ्रीडम उससे कैद हो गई है, उसे छोड़ने के लिए कहते हैं लेकिन छोटा भाई छोड़ता नहीं है। लेकिन एक दिन तोता अपने आप उड़ जाता है करीब 40 दिन के बाद, 50 दिन के बाद, और तोता उड़ने के बाद जो बड़ा भाई है उससे इस घटना से दुखी रहने लगता है कि तोता चला गया। इस द्वंद के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे। दोस्तों, मैंने कहा था आप लोगों से कि बहुत बेहतर होगा कि आप इस बहस को आगे बढ़ाएं, और यदि आप लोग इस बहस को आगे बढ़ाते तो सच में इसके माध्यम से बहुत अच्छी बहस की जा सकती थी, बहुत अच्छे कोण निकाले जा सकते थे और इसे बहुत ही बहुआयामी तरीके से देखा जा सकता था। यही बौद्धिकता होती है और यही हमारी जिंदगी को सच पूछे तो एक नई दिशा और नई गहराई भी देती है। मित्र, मुझे याद आ रहा है एक बार फूल तोड़ने की घटना की चर्चा मैंने की थी और इतना मजा आया था उसमें, आप लोगों ने इतनी सारी प्रतिक्रियाएं अपनी तरफ से दी, तो वो छोटी सी घटना थी कि मैंने किसी को फूल तोड़ने के लिए मना किया था और उस पर मेरी समझ से शायद 5-6 से भी ज्यादा एपिसोड में हम लोगों ने बातें की थी। 7-8 एपिसोड शायद फूल तोड़ने की घटना को ही लेकर के हो गई थी। फूल तोड़ना क्या है, सौंदर्य क्या है, धर्म क्या है, धरती पर गिरने से फूल कैसे गंदे हो, कितने सारे उसमें आयाम निकल गए थे। सच पूछे मित्रों तो यही है बुद्धि की एक्सरसाइज, दिमाग का जो जिम है कह लीजिए। शरीर के जिम को तो हम जानते हैं, आप एक्सरसाइज कर लीजिए, दौड़ लगा लीजिए, साइकिल चला लीजिए, फिजिकल लेबर कर लीजिए तो शरीर की मेहनत हो जाती है, लेकिन दिमाग की मेहनत का क्या करेंगे हम। तो दिमाग की मेहनत इसी तरीके से होती है, जब हम कोई चीज सुनते हैं उस पर फिर अपना फीडबैक देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, फिर उस प्रतिक्रिया पर फिर प्रतिक्रिया मिलती है, फिर उस पर हम प्रतिक्रिया देते हैं। सारा का सारा नॉलेज जो आज हमें हमारे सामने मौजूद है इसी तरीके से तो आया है। लेकिन मित्रों सच पूछे तो तोता वाली घटना से मुझे बहुत उम्मीद थी कि आप लोग इस पर बहुत ही जबरदस्त अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे, लेकिन मुझे उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं मिली। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए, विषय तो आप लोग ही सुझा रहे हैं और दूसरे नए नए विषय दे रहे हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। अभी मेरे पास जो मेल आया है वो फिर से उसी प्रिय श्रोता का है। अब उनकी समस्या एक अलग तरीके की समस्या है, तो मुझे फिर तोता मिल गया तो मैंने कहा नहीं, अब आज इस तोते पर ही हम बात करते हैं। उनकी समस्या अब ये हो गई है कि अब उनका जो छोटा भाई है वो फिर से कह रहा है कि मैं तोता लेकर आऊंगा। अब समस्या ये है कि अब ये क्या करें, ये कुल मिलाकर समस्या है। वैसे आप देखिए ऊपरी तौर पर दोस्तों तो ये क्या कोई समस्या है, लगता है ना कि इसमें क्या समस्या है भाई, लेकिन समस्या है। देखिए लाइफ के बारे में तो हम इसी तरह से विचार कर सकते हैं, घटनाओं को आधार बनाकर ही विचार कर सकते हैं, और जिनके पास वो सिद्धांत होते हैं, जिनके पास वो कसौटियां होती हैं, जिनके पास विवेक होता है, या कह लीजिए कि जो निर्णय लेने की क्षमता, विवेक का मतलब होता है निर्णय लेने की क्षमता, जिनके पास सही निर्णय लेने की क्षमता होती है वो उतना आगे निकल जाते हैं। हमारी जिंदगी बनी ही इसी तरीके से है मित्रों। जिनकी जिंदगी आपको बहुत बनी हुई अच्छी दिखाई दे रही है तो आप ये मत समझिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी में सारे सही ही सही निर्णय लिए हैं, ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैच हम खेलते हैं, आपने मेरी तरफ 49 गोल मारे, मैंने आपकी तरफ 51 गोल मार दिए, मैं जीत गया। गोल तो मैंने भी खाए हैं, 49 गोल मैंने भी खाए, बस 2 मैंने ज्यादा मार दिए, मैं जीत गया। जिंदगी में यही चलता है, ज्यादा बड़े निर्णय ज्यादा संख्या में सही हो गए जिंदगी आगे बढ़ गई, ज्यादा निर्णय गलत हो गए जिंदगी पीछे रह गई, बस कुल मिलाकर यही। तो मित्रों जब हम जिंदगी के बारे में इस तरीके से विचार करना शुरू करते हैं तो सच पूछे हमारी जिंदगी बेहतर होती चली जाती है, क्योंकि उससे फिर हमारे निर्णय बेहतर होते चले जाते हैं। जैसे अब तोते की बात को मैं लेता हूं कि छोटा भाई फिर से तोता ले आया, अब मैं क्या करूं। अब इस पर थोड़ा सा आप सब भी अपने अपने विचार करिए, ज्यादा अच्छा होगा कि अभी आप मुझे अगर सुन रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए इस लाइफ मैनेजमेंट वाले प्रोग्राम को और आप अपने विचार लिखिए। मैंने घटना आपको बता दी, मान लीजिए यह घटना आपके साथ घट रही है, अब आप क्या करेंगे? बिल्कुल सेम घटना, अब आप अपनी तरफ से अपना निर्णय लीजिए, फिर इसको खोलिए, अब फिर मुझे सुनिए कि मैं अब आपको क्या बात बता रहा हूं। और याद रखिए, ध्यान दीजिए कि मेरा जो निर्णय होगा वो बिल्कुल मेरा निर्णय है। कतई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही निर्णय एकमात्र सही निर्णय है और यही निर्णय आपका होना चाहिए, सवाल ही नहीं उठता मित्रों। मेरे हर बात को आप लोग थोड़ा सा इसी तरह से, इसी कोण से देखने की मुझ पर कृपा कीजिएगा कि सर कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहा, मैं कोई फैसला नहीं सुना रहा हूं, मैं तो केवल आपको सोचने के लिए कुछ बिंदु प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपना भोजन खुद बनाएं, राइट। अब देखिए मित्रों कि फिर से तोता वो भाई लेकर के आ गया, अब ये क्या करें? अब इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। आइए, घटना छोटी सी है। पहली बात तो ये है मित्रों कि जो बड़ा भाई है वो अब छोटे भाई के सामने ऑलरेडी कमजोर पड़ चुका है। उसने तोता के उड़ जाने के बाद जो अपने दुख का भाव व्यक्त किया, जो अफसोस जताया, उससे ये साफ हो गया छोटे भाई के दिमाग में कि नहीं, तोता पालना तो बड़े भाई को भी अच्छा लगता है। यह बात अलग है कि बड़ा भाई इसको तोता पालना अच्छा है के रूप में नहीं लेगा, वो कहेगा नहीं नहीं तोता पालना मुझे अच्छा नहीं लगता। दरअसल वो 40-50 दिन तक रह रहा था ना, तो उसकी आदत पड़ गई थी उसको देखने की, बीच बीच में वो आवाज देता था, प्यारा सा लगता था, तो भरा भरा सा घर लगता था, तो उससे थोड़ा सा प्रेम हो गया था, मोह हो गया था, बस और कुछ नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि अब फिर से तोता आए, यही तो संकट है ना। अगर आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है तोता ले आओ, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। भाई तो वही कर रहा है ना, छोटा भाई तो तोता ला रहा है, तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अब आप देखें कि जब शुरुआत में छोटा भाई तोता लेकर आया तो प्रॉब्लम, तोता उड़ गया तो प्रॉब्लम, अब तोता नहीं है। अब जब वो छोटा भाई तोता फिर से लेकर के आ रहा है तो फिर से प्रॉब्लम, और बट ने चले कि अगर खुदा न खास्ता ये फिर से उड़ गया तो फिर से प्रॉब्लम। तो अब इस प्रॉब्लम का हल क्या है, आप नहीं देख रहे हैं कि हम दोनों में से किसी भी स्थिति में खुश ही नहीं है? तो आपको नहीं लग रहा है कि ये प्रॉब्लम हम खुद पैदा कर रहे हैं? और ये कहां से पैदा हो रही है? केवल हमारे दिमाग से पैदा हो रही है, हमारी सोच से पैदा हो रही है। यानी कि जो भी स्थिति हमारे सामने आती है हम उस स्थिति को स्वीकार ही नहीं कर पाते, हम उस स्थिति के बिल्कुल विरुद्ध खड़े हो जाते हैं और अपनी बात को तरजीह देने के लिए, मजबूती देने के लिए हम कोई ना कोई अपने लिए तर्क ढूंढ लेते हैं। अदरवाइज अब अगर बड़े भाई को जैसे कि मोह हो गया तोते से क्योंकि वह साथ में रहे, छोटे भाई को ऐसे कोई मोह हो गया होगा कभी तोते से? यहां तक कि कहानी किससे सुन सुन करके जानवरों से मोह हो जाते हैं, राइट। तो अगर 40 दिन साथ रहने से बड़े भाई को मोह हो गया है और छोटा भाई भी अगर इस तरह का मोह रखता है तो हम इसे स्वीकार क्यों नहीं कर ले कि ठीक है तुमको तोता प्यारा लगता है, चलो तुमको ले आओ, तुम रखो, कोई बात नहीं है। अब आप एक तर्क देंगे कि नहीं हम उसकी स्वतंत्रता को बाधित कर रहे हैं। तो मित्रों ये तो हम सोच रहे हैं, हम स्वतंत्रता को बाधित, मैं तर्क दे रहा हूं है ना, मेरे आप मत कहिएगा कि ये मेरे विचार ही हैं, है ना, मैं केवल आपको सोचने के एंगल दे रहा हूं फ्रेंड्स। तो अगर आपको तोते की स्वतंत्रता बाधित लग रही है तो कहीं ना कहीं उस स्वतंत्रता के बदले तोता सुरक्षित भी तो है, उसको खाने पीने को मिल रहा है, उसका इलाज हो रहा है, वो सुविधाजनक स्थिति में है। लेकिन आप कह सकते हैं कि क्या फिर गुलामी को स्वीकार किया जाए? और अगर सच में तोता इतने सुविधाजनक स्थिति में है तो पिंजरा खोलने के बाद वो उड़ क्यों जाता है? उसको तो वहीं बंद के रहना चाहिए। तोता में विवेक नहीं है, वो चीजों के बारे में सोच नहीं सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखिए कि आकाश में उड़ान भरना तोते का स्वभाव है, वो जीव है, उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास केवल उतनी ही बुद्धि है कि वह अपने स्वभावगत या जन्मजात जो उसकी प्रवृत्ति डाल दी गई है वहां तक वो बुद्धि का इस्तेमाल कर सकती है, सोच समझ नहीं सकती। तो उड़ना उसका स्वभाव है, इसलिए जब आप पिंजरे को खोल देंगे तो वह उड़ेगा ही उड़ेगा क्योंकि वह उसका स्वभाव है। सवाल यह नहीं कि वह इसके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। तोता यह नहीं सोच सकता, हम सोच सकते हैं, इसीलिए तो हम उससे श्रेष्ठ हैं। दोस्तों फिर एक पॉइंट और है, देखिए जब हम सोचने लगते हैं तो पॉइंट्स निकलने लगते हैं। एक पॉइंट फिर यह भी आता है कि मैं तोते के स्वतंत्रता का तो सम्मान कर रहा हूं, ठीक है, और मैं अपने भी पसंदगी नापसंदगी का सम्मान कर रहा हूं ना, क्योंकि अब फिर से आएगा तो मेरे सामने संकट है, तो मैं अपनी सोच का सम्मान कर रहा हूं, मैं अपने विचारों का सम्मान कर रहा हूं। तो यदि मैं तोते की स्वतंत्रता का सम्मान कर रहा हूं, यदि मैं अपने विचारों और अपनी पसंदगी नापसंदगी का, या कह लीजिए कि अपनी इच्छाओं का सम्मान कर रहा हूं, तो क्या मुझे नहीं चाहिए कि मैं दूसरों की भी स्वतंत्रता का सम्मान करूं? यानी कि तो क्या मुझे अपने छोटे भाई की यह इच्छा कि वह तोता लाना चाहता है, इस स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करना चाहिए? अगर मैं स्वतंत्रता का इतना अधिक पक्षधर हूं कि मुझे तोता को पिंजड़े में पालना एक तरीके से उसके स्वतंत्रता को बाधित करना लग रहा है, तो फिर छोटे भाई की जो यह इच्छा है कि तोता पाला जाए, यह भी उसकी एक स्वतंत्रता है, तो मुझे इसका भी सम्मान करना चाहिए। फिर एक पॉइंट यह भी आता है मित्रों कि तोता को आप पाल रहे हैं, उसके साथ कोई क्रूरता नहीं कर रहे, जैसे जानवरों के साथ क्रूरता होती है। जल्लीकट्टू का जो भी मामला चल रहा है वो क्या है, ये थोड़ी कि सांडों को लड़ाया नहीं जाना चाहिए या सांडों, यही है कि उसके साथ अन्याय किया जाता है, उसमें चोट पहुंचती है, उससे लोगों की डेथ होती है। आप न्यूज में भी सुन रहे हैं लोगों की डेथ हो गई, कितने सारे लोग घायल हो जाते हैं, तो हार्मफुल है उसकी जो एक्टिविटीज है उस खेल की, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। तो उसी को लेकर के तो कोर्ट में मामला चल रहा है। तो तोते को पालना कोई हार्मफुल नहीं है, वो उसकी एक तरीके से हिफाजत करना ही कहीं ना कहीं है। तो ऐसी स्थिति में यह भी नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा करके उसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि अब एक छोटी सी बात है और इस छोटी सी बात में से कितनी सारी बातें निकल गई। आप भी अपनी बातें निकालिए, और यदि आपने मेरे पहले जो मैंने कहा था उसका पालन किया होगा तो आप अपनी बात को मेरी बात से मिलाइए, और आप देखेंगे कि हम दोनों की बातें मिलकर के उससे फिर और ढेर सारी बातें निकल जाएंगी, और उन पर विचार कीजिए और आनंद लीजिए, और इससे दिमाग मजबूत होता है मित्रों, इससे हमारे निर्णय लेने की क्षमता आगे चलकर बढ़ती चली जाती है। इसीलिए तो हमारे यहां कहा गया है कि कोई धूप में बाल सफेद नहीं हुए हैं, है ना, जिंदगी की धूप झेली है हमने अनुभव के स्तर पर इनको जिया है, बार बार निर्णय लिए हैं, उसमें से गलत हुए हैं, सही हुए हैं, तब हम अब इस स्थिति पर पहुंचे हैं कि हम सही निर्णय ले सकते हैं। इसी को कहा जाता है बुजुर्गियत, कि अब इनके पास जीवन के अनुभव हैं। तो मित्रों आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।